आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 26 अगस्त 2026 के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ते AI डेटा सेंटर आज होने वाली नेशनल कैबिनेट की बैठक में चर्चा का प्रमुख मुद्दा रहेंगे। देश में मौजूद 165 डेटा सेंटर पहले ही राष्ट्रीय बिजली बाजार की करीब 3% बिजली की खपत करते हैं। फेडरल सरकार चाहती है कि नए बन रहे डेटा सेंटर अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करें और पानी की आपूर्ति तथा स्थानीय समुदायों पर उनके प्रभाव को सीमित किया जाए। हालांकि क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी इस अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यों को कोयला और गैस के उपयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीशी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का तेजी से विस्तार केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र पर भी दूरगामी असर डाल सकता है। सरकार अगले वर्ष की शुरुआत में AI के लिए अनिवार्य मानकों से जुड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। वहीं ग्रीन्स पार्टी ने सरकार से आज की नेशनल कैबिनेट बैठक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। बैठक में AI डेटा सेंटरों के लिए राष्ट्रीय नियमों के अलावा घरेलू हिंसा, बर्ड फ्लू, ईंधन सुरक्षा और बंदूक कानूनों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ग्रीन्स नेता लॉरिसा वॉटर्स ने कहा है कि लैंगिक हिंसा पर तत्काल कार्रवाई के लिए नेशनल कैबिनेट की बैठक हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन कई वादे अब भी लागू नहीं हुए हैं और उनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने राज्य और क्षेत्रीय सरकारों से अग्रिम पंक्ति की सेवाओं के लिए पूरा वित्त पोषण सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि महिलाओं और बच्चों को सहायता से वंचित नहीं होना पड़े। वाटर्स ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामाजिक सोच और व्यवहार को बदलने के लिए रोकथाम कार्यक्रमों में अधिक निवेश की भी मांग की है। दूसरी तरफ फेडरल सरकार ने बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए निजी स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट को कम करने की अपनी योजना का बचाव किया है। सरकार का प्रस्ताव है कि अगले साल अप्रैल से 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलने वाली अतिरिक्त आयु आधारित रिबेट समाप्त कर दी जाए जबकि आय आधारित रिबेट जारी रहेगी। सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव के कारण लगभग 44,000 वरिष्ठ नागरिक निजी स्वास्थ्य बीमा छोड़ सकते हैं जबकि मेडिबैंक का कहना है कि यह संख्या 91,000 तक पहुंच सकती है। आलोचकों का तर्क है कि इससे सार्वजनिक अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है। रोजगार मंत्री अमांडा रिस्वर्थ ने कहा कि निजी स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली रिबेट पूरी तरह खत्म नहीं की जा रही है और सरकार को उम्मीद है कि बीमा लेने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी। सरकार के मुताबिक इस बदलाव से वृद्ध देखभाल के लिए अतिरिक्त $3 अरब जुटाने में मदद मिलेगी। वहीं सिडनी के प्रमुख प्रॉपर्टी डेवलपर बाथला ग्रुप के स्वैच्छिक प्रशासन यानी वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद हजारों घर खरीदारों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। कंपनी वेस्टर्न सिडनी में हजारों आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। बाथला ग्रुप का कहना है कि संपत्ति बाजार में सुस्ती, निर्माण लागत में बढ़ोतरी और बढ़ते कर्ज के दबाव ने उसके कारोबार को प्रभावित किया है। कंपनी के पुनर्गठन के लिए दिवालियापन विशेषज्ञ टेनेओ को नियुक्त किया गया है और कंपनी का कारोबार जारी रखने की कोशिश की जा रही है। न्यू साउथ वेल्स बिल्डिंग कमीशन ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और प्रभावित खरीदारों, ग्राहकों और ठेकेदारों से प्रशासक से संपर्क करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में अमेरिका के मोंटाना राज्य में एक पारिवारिक डिनर के दौरान हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 44 वर्षीय संदिग्ध एलन स्मिथ ने परिवार पर हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। परिजनों का कहना है कि स्मिथ को कुछ सप्ताह पहले अपने माता पिता का घर छोड़ने के लिए कहा गया था। मृतकों में एक ही परिवार की चार पीढ़ियों के सदस्य शामिल थे, जिनकी उम्र 7 साल की बच्ची से लेकर 90 साल से अधिक उम्र की महिला तक थी। पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद घर में आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार 12 वर्षीय एक बच्ची ने आपातकालीन सेवाओं को फोन कर अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी। मामले की जांच जारी है। अब खबरें भारत से। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल जून तिमाही में प्रवासी भारतीयों की जमा राशि की आवक करीब 23% घटकर 2.78 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी अवधि में यह राशि 3.61 अरब डॉलर थी। हालांकि जून 2026 के अंत तक प्रवासी भारतीयों की कुल जमा राशि बढ़कर 168.51 अरब डॉलर हो गई, जो मई में 165.96 अरब डॉलर थी। इसी के साथ 26 अगस्त के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।